एकत्र ज्ञान गोष्ठी आज के जरूरी विचारों का सार अब अपनी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। ज्ञान गोष्ठी में आपका स्वागत है।
नमस्कार।
नमस्कार। एकत्र ज्ञान गोष्ठी में सभी का स्वागत है। आज हम एक ऐसी किताब की गहराइयों में उतर रहे हैं जिसने सचमुच दुनिया को हिलाकर रख दिया था।
हाँ बिल्कुल।
हम बात कर रहे हैं थॉमस पेन के राइट्स ऑफ मैन यानी मानवाधिकार की।
हाँ, और कमाल की बात यह है कि ये किताब सिर्फ इतिहास की किताबों में सिमट कर नहीं रह गई है।
सही कहा।
पेन ने जिन मुद्दों को छोड़ा, सरकार क्यों होनी चाहिए, शासन का हक आता कहाँ से है, लोगों की मर्जी क्यों जरूरी है,
हाँ,
ये सवाल तो आज भी हमारी बहसों के बीचों बीच है ना।
बिल्कुल। आज हम जिसे लोकतंत्र कहते हैं उसकी जड़ें कहीं ना कहीं पेन जैसे विचालकों की सोच में हैं।
सही है।
तो आज की ज्ञान गोष्ठी में हम इसी किताब के जरिए उन जड़ों को समझने की कोशिश करेंगे।
बढ़िया,
तैयार हैं? चलिए शुरू करते हैं लेखक से।
जरूर। थॉमस पेन 1737-1809, नाम तो अंग्रेजी लगता है लेकिन इनका काम अमेरिका और फ्रांस की क्रांतियों से जुड़ा है।
हाँ,
और मजे की बात यह है कि ये कोई बड़े भारी प्रोफेसर या अमीर खानदान के नहीं थे।
सही कहा। उनकी खासियत यही थी कि वो आम लोगों में से थे, एक निम्न मध्यम वर्गीय परिवार से।
जी।
उन्होंने ब्रिटेन की वो ऊंच नीच वाली व्यवस्था को खुद जिया था।
हाँ, प्रत्यक्ष अनुभव था।
और शायद इसीलिए वो मुश्किल राजनीतिक और दार्शनिक विचारों को इतनी साफ और जोरदार भाषा में लिख पाए।
बिल्कुल।
ऐसी भाषा जो सीधी दिल तक पहुंचे।
और वो सिर्फ कमरे में बैठकर लिखने वाले विचारक नहीं थे, वो मैदान में थे।
अच्छा।
वो अमेरिकी और फ्रांसीसी दोनों क्रांतियों के बीच में थे, उन्होंने घटनाओं को अपनी आंखों से देखा।
उनकी एक और मशहूर किताब है कॉमन सेंस।
हाँ, सुना है उसके बारे में।
उसने अमेरिकी आजादी के लिए लोगों को तैयार करने में जबरदस्त भूमिका निभाई थी। तो मतलब उनकी बातों में वजन था।
बहुत। उनके अनुभवों से आता था, उनके उसूलों के प्रति उनकी लगन से।
ठीक है।
और इस बात से कि उन्होंने राजशाही, गणतंत्र, क्रांति सबको करीब से देखा और परखा था। उनका जुनून सिर्फ किताब ही नहीं था, वो सच में दुनिया बदलना चाहते थे।
एकदम। तो अब आते हैं किताब राइट्स ऑफ मैन पर। ये किताब लिखी क्यों गई थी?
हाँ, इसका सीधा ताल्लुक है फ्रांसीसी क्रांति से।
अच्छा।
उस समय एक बड़े रूढ़ीवादी विचारक थे एडमंड बर्क।
हाँ, बर्क।
उन्होंने फ्रांसीसी क्रांति की कड़ी आलोचना करते हुए एक किताब लिखी थी।
पेन ने राइट्स ऑफ मैन उसी के जवाब में लिखी।
तो ये एक तरह की वैचारिक जंग थी।
बिल्कुल।
बर्क परंपरा, विरासत और राजशाही के हिमायती थे।
और पेन?
पेन ने उसके ठीक उलट तर्क, सबके लिए बराबर अधिकार और जनता द्वारा चुनी गई सरकार यानी गणतंत्र का परचम लहराया। ये किताब एक तरह से फ्रांसीसी क्रांति का बचावनामा है, लेकिन उससे कहीं बढ़कर है।
कैसे बढ़कर है? मतलब किताब हमें कहाँ ले जाती है, क्या है इसमें?
देखिए, किताब के दो हिस्से हैं मोटे तौर पर।
ठीक है।
पहले हिस्से में पेन बर्क की दलीलों की आप कह सकती हैं धज्जियां उड़ाते हैं।
अच्छा।
वो उस सोच पर कड़ा प्रहार करते हैं कि राजा या पुरानी पीढ़ियां हमेशा के लिए नियम तय कर सकती हैं, जिसे वो कहते हैं कब्र के पार से शासन करने का घमंड।
कब्र के पार से शासन करने का घमंड, वाओ।
हाँ, वो समझाते हैं कि कुछ अधिकार हमें जन्म से मिलते हैं, प्राकृतिक, और कुछ समाज में रहने से, नागरिक।
ओके।
और वो फ्रांसीसी क्रांति को जुल्म के खिलाफ एक वाजिब और जरूरी कदम बताते हैं।
ये तो हुआ पहला हिस्सा। और दूसरा?
दूसरा हिस्सा और भी क्रांतिकारी है। यहाँ पेन सिर्फ आलोचना नहीं करते बल्कि एक नई बेहतर सरकार और समाज का पूरा नक्शा पेश करते हैं।
पूरा नक्शा मतलब?
मतलब वो कहते हैं कि एक लिखा हुआ संविधान होना चाहिए जो सरकार की ताकत तय करे।
लिखित संविधान जरूरी क्यों?
ताकि सरकार मनमानी ना कर सके। फिर वो राजशाही को खर्चीला, युद्धखोर और बेकार बताते हैं। और उसकी जगह गणतंत्र को तर्कसंगत और शांतिप्रिय।
ठीक है।
और सबसे हैरत अंगेज बात, वो उस जमाने में सामाजिक सुरक्षा योजनाओं की वकालत करते हैं।
सच में? उस जमाने में? जैसे कि?
सोचिए, प्रोग्रेसिव टैक्स, बच्चों की शिक्षा के लिए मदद, बुजुर्गों के लिए पेंशन।
अरे वाह,
ये तो आज के वेलफेयर स्टेट का ब्लूप्रिंट लगता है।
वाकई, ये तो अपने समय से बहुत आगे की सोच लगती है। चलिए अब इन हिस्सों में थोड़ा और गहरा उतरते हैं।
हाँ जरूर।
पहले भाग का नाम ही है श्री बर्क के फ्रांसीसी क्रांति पर हमले का जवाब। पेन शुरुआत में ही इसे जॉर्ज वॉशिंगटन को समर्पित करते हैं।
हाँ, जो उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति थे।
एक तरह से वो बहस का मंच तैयार कर देते हैं, खानदानी राज चलेगा या जनता की चुनी हुई सरकार।
बिल्कुल। और यहीं पर वो बर्क की इस दलील का मजाक उड़ाते हैं कि कोई गुजरी हुई पीढ़ी आने वाली पीढ़ियों को बांध सकती है।
वो कब्र वाली बात।
हाँ, पेन का वो मशहूर वाक्य है, कब्र के पार शासन करने का दंभ और अनुमान सभी अत्याचारियों में सबसे हास्यास्पद और ढीठ है।
कितनी सटीक बात है।
उनका मानना था कि हर पीढ़ी आजाद है अपनी सरकार चुनने के लिए। अधिकार कोई विरासत में मिली जमीन जायदाद नहीं है। वो हर इंसान के अंदर मौजूद हैं जन्म से ही।
ये अधिकार वाली बात बहुत अहम है। पेन ने प्राकृतिक और नागरिक अधिकारों में फर्क किया था, है ना?
हाँ।
ये थोड़ा समझाएंगे, ये क्या फर्क है?
हाँ, ये समझना बहुत जरूरी है। देखिए, पेन कहते हैं कि प्राकृतिक अधिकार वो हैं जो हमें सिर्फ इंसान होने के नाते मिलते हैं।
जैसे?
जैसे सोचने का अधिकार, अपनी मर्जी से धर्म चुनने या ना चुनने का अधिकार, अपनी अंतरात्मा की सुनने का अधिकार।
अच्छा।
या अपनी खुशी के लिए कुछ भी करने का अधिकार, जब तक हम दूसरों को नुकसान ना पहुंचाएं।
ठीक है, ये अधिकार हमसे कोई छीन नहीं सकता।
बिल्कुल नहीं, सरकार भी नहीं।
ओके, और नागरिक अधिकार?
नागरिक अधिकार वो हैं जो हमें समाज का हिस्सा होने के नाते मिलते हैं, जैसे हमारी संपत्ति की सुरक्षा का अधिकार। पेन का तर्क है कि अकेले इंसान इन नागरिक अधिकारों की पूरी गारंटी नहीं दे सकता।
सही बात है।
मान लीजिए आपकी जमीन पर कोई कब्जा कर ले।
हाँ।
तो आप अकेले क्या करेंगे?
मुश्किल है।
इसीलिए लोग मिलकर समाज बनाते हैं और फिर सरकार बनाते हैं।
अच्छा।
और सरकार का एकमात्र जायज काम इन्हीं नागरिक अधिकारों की रक्षा करना है।
मतलब ये हमारे प्राकृतिक अधिकारों को समाज में सुरक्षित रखने का तरीका है।
बिल्कुल सही। सरकार इन अधिकारों को देती नहीं, सिर्फ उनकी रक्षा करती है।
वाह, ये तो सरकार के काम को बिल्कुल सीमित कर देता है।
हाँ।
और इसी तर्क से उन्होंने फ्रांसीसी क्रांति को सही ठहराया, जबकि बर्क उसे अराजकता बता रहे थे।
बिल्कुल। पेन ने कहा कि फ्रांसीसी क्रांति कोई अचानक भड़की हिंसा नहीं थी।
तो क्या थी?
बल्कि सदियों से चले आ रहे जुल्म और अन्याय के खिलाफ लोगों का एक सोचा समझा और वाजिब कदम था। वो फ्रांस की मनुष्य और नागरिक के अधिकारों की घोषणा की बहुत तारीफ करते हैं।
अच्छा।
वो कहते हैं कि क्रांति असल में गलत उसूलों के खिलाफ थी, किसी एक राजा के खिलाफ नहीं, ये सिद्धांतों की लड़ाई थी।
तो ये था पहला हिस्सा जहाँ पेन ने बर्क को जवाब दिया और क्रांति का बचाव किया।
जी।
अब दूसरे हिस्से पर आते हैं, सिद्धांत और व्यवहार का संयोजन। यहाँ पेन अपना नजरिया पेश करते हैं कि सरकार और समाज होने कैसे चाहिए।
हाँ, और यहाँ वो समाज और सरकार के बीच एक बहुत मशहूर फर्क बताते हैं।
कौन सा फर्क?
उनकी एक और यादगार लाइन है, समाज हमारी जरूरतों से उत्पन्न होता है और सरकार हमारी दुष्टता से।
समाज जरूरतों से, सरकार दुष्टता से, इसका क्या मतलब हुआ?
मतलब ये कि समाज तो स्वाभाविक है, अच्छा है। लोग अपनी जरूरतें पूरी करने, एक दूसरे का साथ देने के लिए स्वाभाविक रूप से साथ आते हैं।
हाँ, ये तो होता है।
लेकिन सरकार इसलिए बनानी पड़ती है क्योंकि लोगों में बुराइयां भी होती हैं, लोग गलत काम भी करते हैं।
अच्छा।
तो सरकार एक जरूरी बुराई है।
जरूरी बुराई?
हाँ, जिसका काम बस इतना है कि वो लोगों को एक दूसरे के अधिकार छीनने से रोके। समाज जितना अच्छा होगा, सरकार की जरूरत उतनी कम होगी।
कमाल का नजरिया है।
हाँ, इसी सोच को आगे बढ़ाते हुए पेन एक लिखी हुई स्पष्ट संविधान की जबरदस्त वकालत करते हैं।
लिखित संविधान की?
हाँ, वो कहते हैं कि संविधान सरकार से भी ऊपर है।
सरकार से ऊपर?
हाँ, संविधान सरकार नहीं बनाती।
हाँ?
बल्कि लोग संविधान बनाते हैं। हाँ? ताकि सरकार बनाई जा सके और उसकी हदें तय की जा सके।
मतलब सरकार संविधान के दायरे में ही काम कर सकती है।
बिल्कुल। उनका तर्क था कि अगर कोई लिखा हुआ संविधान नहीं है जिसे सब देख सके, पढ़ सके, तो असल में कोई संविधान है ही नहीं।
अच्छा।
वो क्रिटेन की इसी बात पर आलोचना करते थे कि वहाँ सब कुछ परंपरा और रिवाज पर चलता था, कोई एक स्पष्ट दस्तावेज नहीं था जो राजा या संसद की शक्तियों को सीमित करता हो।
तो उनके लिए संविधान जनता की ताकत का सबसे बड़ा सबूत था।
सही कहा। इसके बाद वो सीधे सीधे पुरानी सरकारों, खासकर खानदानी राजशाही।
हाँ।
और अमीर घरानों का राज, यानी अभिजात्य तंत्र पर हमला बोलते हैं।
वो क्या कहते हैं इनके बारे में?
वो कहते हैं कि सरकारें बस दो तरह की होती हैं, या तो वो जनता से बनती हैं जैसे गणतंत्र।
ठीक।
या जनता पर थोप दी जाती हैं जैसे खानदानी राज।
और खानदानी राज के बारे में?
वो राजशाही को बिल्कुल अतार्किक, बेवकूफी भरा मानते हैं। उनका कहना था कि राजा का बेटा ही राजा बनेगा, ये तो एक लॉटरी है।
लॉटरी मतलब?
मतलब जरूरी थोड़ी है कि वो काबिल हो, हो सकता है वो मूर्ख या अत्याचारी हो।
हाँ, ये तो है।
और वो राजशाही और अमीरों के राज को बहुत खर्चीला और युद्धों का कारण मानते थे।
खर्चीला और युद्धखोर?
हाँ, कहते थे कि ये लोग जनता पर भारी टैक्स लगाते हैं और आपस में लड़ाइयां लड़ते रहते हैं जिसका बोझ आम आदमी उठाता है। इसके मुकाबले वो गणतंत्र, यानी ऐसी सरकार जहाँ प्रतिनिधि जनता द्वारा चुने जाएं, उसकी तारीफ करते हैं।
क्यों?
क्योंकि वो तर्क लोगों की भलाई और पैसे की सही देखरेख पर आधारित होती है।
यहाँ तक तो राजनीतिक बातें हुई, लेकिन जैसा आपने शुरू में कहा था, पेन आर्थिक और सामाजिक सुधारों की भी बात करते हैं,
बिल्कुल,
जो उन्हें अपने समय से बहुत आगे का विचारक बनाता है।
हाँ बिल्कुल, ये शायद किताब का सबसे चौंकाने वाला और आज भी प्रासंगिक हिस्सा है।
अच्छा,
पेन ने राजनीति और अर्थशास्त्र को जोड़ा। उनका मानना था कि यूरोप में जो भयंकर गरीबी है,
हाँ,
वो लोगों की नाकामी नहीं बल्कि खराब सरकारी नीतियों, अन्यायपूर्ण टैक्स सिस्टम और फालतू के युद्धों पर होने वाले खर्च का नतीजा है।
मतलब गरीबी सिस्टम की देन है।
हाँ, काफी हद तक। और उन्होंने इसका हल क्या सुझाया?
हाँ, क्या हल सुझाया?
उन्होंने बाकायदा योजनाएं पेश की।
योजनाएं जैसे?
पहला, प्रोग्रेसिव इनकम टैक्स, मतलब अमीरों पर, खासकर बड़े जमींदारों पर ज्यादा टैक्स लगाओ।
ठीक है।
इससे पैसा भी आएगा और दौलत कुछ लोगों के हाथ में जमा नहीं होगी।
ओके।
दूसरा, सामाजिक कल्याण कार्यक्रम। सोचिए, वो उस जमाने में कह रहे थे कि सरकार गरीब बच्चों की पढ़ाई का खर्च उठाए,
कमाल है।
बच्चे पैदा होने पर माओं को मदद दे, बुजुर्गों को पेंशन दे, यहाँ तक कि गरीबों के अंतिम संस्कार का खर्च भी सरकार उठाए।
ये सब उस समय में?
हाँ,
विश्वास नहीं होता,
है ना। तीसरा, रोजगार योजना। जो लोग बेरोजगार हैं उनके लिए सरकारी खर्चे पर काम धंधे शुरू किए जाएं। और चौथा, हथियारों की होड़ खत्म करो। उन्होंने ब्रिटेन, फ्रांस और अमेरिका से अपील की कि अपनी नौसेनाएं कम करें।
अच्छा,
उनका हिसाब था कि अगर युद्धों पर पैसा बर्बाद करना बंद कर दें तो टैक्स बहुत कम हो सकते हैं और गरीबी मिटाई जा सकती है।
ये तो कमाल है। ये विचार तो आज भी सरकारों के लिए मतलब एक चुनौती जैसे हैं।
बिल्कुल।
तो चलिए अब इस पूरी चर्चा से निकले कुछ मुख्य विषयों या संदेशों को समेटते हैं। एक बड़ा संदेश तो यही लगता है कि सत्ता हमेशा जिंदा लोगों के हाथ में होनी चाहिए।
हाँ, जीवित लोगों की संप्रभुता, बेन का ये मूल मंत्र था।
क्या मतलब है इसका?
उनका कहना था कि ये धरती जिंदा लोगों की है। कोई गुजरी हुई पीढ़ी या मरी हुई परंपरा आने वाली पीढ़ी को जकड़ नहीं सकती। परंपराएं तभी ठीक हैं जब वो आज की पीढ़ी की मर्जी और उनके अधिकारों से मेल खाती हों। हर पीढ़ी को अपना रास्ता खुद चुनने का हक है।
सही बात है। आज भारत में भी जब हम पुराने कानूनों या सामाजिक रीति रिवाजों को बदलने की बात करते हैं,
हाँ
तो कहीं ना कहीं पेन की आवाज सुनाई देती है।
बिल्कुल। दूसरा अहम संविषय, प्राकृतिक और अर्हणीय अधिकार।
हाँ, ये तो बहुत जरूरी है।
मतलब अधिकार हमें जन्म से मिलते हैं, कोई सरकार या राजा हमें देता नहीं।
सरकार का काम बस उनकी रक्षा करना है।
सही, ये सोच हमारे संविधान में दिए गए मौलिक अधिकारों का आधार है। जब हम अपने अधिकारों के लिए लड़ते हैं तो हम पेन की इसी परंपरा को आगे बढ़ा रहे होते हैं।
तीसरा,
खानदानी राज का खोखलापन।
अच्छा,
पेन ने बड़ी बेबाकी से कहा कि सिर्फ किसी खास परिवार में पैदा होने से किसी को शासन करने का हक नहीं मिल जाता।
हाँ, ये योग्यता के खिलाफ है।
बिल्कुल, और समाज में गैर बराबरी पैदा करता है। आज भी जब हम भाई भतीजावाद या सिर्फ पहचान के बल पर आगे बढ़ने की प्रवृत्तियों की आलोचना करते हैं,
हाँ,
तो पेन का ये तर्क याद आता है।
चौथा,
तर्क ही सबसे बड़ा मार्गदर्शक।
तर्क,
हाँ, पेन का जोर था कि राजनीति भावनाओं, परंपराओं या धार्मिक दामों पर नहीं बल्कि तर्क पर आधारित होनी चाहिए। ऐसे सिद्धांत जो सबके लिए समान हो, जिन्हें सब समझ सके। आज के वैज्ञानिक युग में ये बात और भी मायने रखती है।
और पांचवा
जो मुझे बहुत महत्वपूर्ण लगता है, सामाजिक न्याय सरकार की जिम्मेदारी है।
अच्छा, सामाजिक न्याय।
हाँ, पेन ने कहा कि सरकार सिर्फ कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए नहीं है बल्कि उसे नागरिकों की आर्थिक भलाई का भी ध्यान रखना होगा। गरीबी कोई व्यक्तिगत कमी नहीं बल्कि अक्सर गलत नीतियों का नतीजा होती है।
सही है।
आज भारत में जब हम कल्याणकारी योजनाओं, सब्सिडी या बढ़ती आर्थिक असमानता पर बहस करते हैं,
हाँ,
तो हम पेन के उठाए सवालों से ही जूझ रहे होते हैं।
पेन की भाषा इतनी जोरदार थी कि उनकी कई बातें कहावतों की तरह बन गईं।
हाँ बिल्कुल।
कुछ यादगार पंक्तियों पर गौर करें।
हाँ क्यों नहीं। पहली तो वही, कब्र के पार शासन करने का दंभ और अनुमान सभी अत्याचारियों में सबसे हास्यास्पद और ढीठ है।
इसका मतलब साफ है, गुजरी पीढ़ियों को आने वाली पीढ़ियों पर हुकूमत चलाने का कोई हक नहीं।
बिल्कुल, हर पीढ़ी अपनी मालिक खुद है।
दूसरी,
समाज हमारी जरूरतों से उत्पन्न होता है और सरकार हमारी दुष्टता से।
हाँ, ये समाज की अच्छाई और सरकार की जरूरी बुराई वाले फर्क को दिखाती है।
सही, इसका इशारा है कि सरकार को कम से कम दखल देना चाहिए।
और तीसरी,
संविधान केवल नाम की चीज नहीं है बल्कि वास्तव में है, और जहां भी इसे दृश्य रूप में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता वहां कोई संविधान नहीं है।
मतलब एक लिखी हुई, सबके सामने मौजूद संविधान की अहमियत।
हाँ, जो सरकार पर लगाम लगा सके। अगर ऐसा नहीं है तो पेन के हिसाब से वो सिर्फ नाम का संविधान है, असली नहीं।
ये सारे विचार बड़े गहरे हैं, लेकिन सवाल उठता है कि आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में हम इन विचारों का क्या करें?
हाँ, ये सवाल वाजिब है।
इनका हमसे क्या लेना देना?
लेना देना तो बहुत है। सबसे पहली बात, ये हमें एक जागरूक नागरिक बनने की प्रेरणा देते हैं।
जागरूक नागरिक कैसे?
पेन की किताब हमें याद दिलाती है कि हमें अपने अधिकार पता होने चाहिए और सरकार से सवाल पूछने का हक है। वोट डालना, अपने इलाके की समस्याओं पर आवाज उठाना, चुने हुए नेताओं को उनके वादों की याद दिलाना, ये सब पेन की सोच को ही अमल में लाना है।
मतलब नागरिक होना कोई चुपचाप बैठने वाली बात नहीं है।
बिल्कुल नहीं, ये एक सक्रिय भूमिका है। संविधान का असली मतलब क्या है, सरकार की सीमाएं क्या होनी चाहिए, हमारे मौलिक अधिकार कितने मजबूत हैं,
हाँ।
इन सवालों को समझने के लिए पेन की ये किताब एक अच्छी शुरुआत हो सकती है। आज भी जो लोग जनहित याचिकाएं दायर करते हैं,
हाँ,
वो कहीं ना कहीं इन्हीं अधिकारों की रक्षा के लिए लड़ रहे होते हैं।
और आर्थिक नीतियां?
हाँ, पेन ने जो सामाजिक सुरक्षा की बात की थी, वो आज के वेलफेयर स्टेट का आधार है। उनकी बातें हमें सोचने पर मजबूर करती हैं कि क्या हमारी आर्थिक नीतियां सबके लिए फायदेमंद है?
हाँ।
क्या अमीरी गरीबी का फासला कम हो रहा है या बढ़ रहा है?
हाँ, ये बड़े सवाल हैं।
क्या टैक्स का बोझ सही तरीके से बटा हुआ है?
हाँ।
आज जब हम सब्सिडी, आरक्षण या न्यूनतम आय गारंटी जैसी चीजों पर बहस करते हैं,
सही है,
तो हम पेन के उठाए मुद्दों के इर्द गिर्द ही घूम रहे होते हैं।
और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इनका कुछ असर है।
बहुत। पेन का ये विचार कि कुछ अधिकार सार्वभौमिक हैं, यानी हर इंसान को मिलने चाहिए, चाहे वो कहीं भी रहता हो,
हाँ,
यही आज के मानवाधिकार कानूनों का आधार है।
अच्छा।
दुनिया में कहीं भी तानाशाही का विरोध होता है या लोकतंत्र के लिए आंदोलन चलता है, तो उसके पीछे पेन जैसे विचारकों की प्रेरणा होती है।
तो इस पूरी ज्ञान गोष्ठी से हम क्या लेके जाएं, क्या मुख्य सीख है?
मेरे लिए सबसे बड़ा सबक ये है कि असली राजनीतिक ताकत लोगों की सहमति से आती है, विरासत से नहीं।
हाँ।
और सरकार का पहला काम हर व्यक्ति के अधिकारों और सम्मान की रक्षा करना है।
ठीक है।
हमें चीजों को सिर्फ इसलिए स्वीकार नहीं कर लेना चाहिए कि वो हमेशा से चली आ रही हैं, बल्कि उन्हें तर्क और न्याय की कसौटी पर परखना चाहिए।
और मेरे लिए सबसे अहम बात है पेन का वो नजरिया जिसने राजनीतिक आजादी को आर्थिक इंसाफ से जोड़ा।
हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है।
सच्ची आजादी सिर्फ वोट डालने या बोलने की आजादी नहीं है, बल्कि ये भी है कि हर किसी को सम्मान से जीने का मौका मिले।
बिल्कुल।
और ये तभी होगा जब हम यानी आम नागरिक जागरूक और सक्रिय रहेंगे। सरकारें खुद ब खुद अच्छी नहीं हो जाती,
उन्हें अच्छा बनाना पड़ता है।
सही कहा।
चलिए, श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं।
हाँ, जरूर।
पेन ने कहा था कि खराब सरकार गरीबी पैदा करती है। आज के समय में हमें इस बात की सच्चाई कहाँ कहाँ दिखती है?
सोचने वाली बात है।
और एक न्यायपूर्ण समाज बनाने में नागरिक के तौर पर हमारी अपनी क्या जिम्मेदारियां हैं?
सोचिएगा जरूर।
मिलेंगे अगले अंक में एक और विश्व प्रसिद्ध व्यक्तित्व, एक और किताब और एक ऐसे नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।